क्या कर रहे, क्या जमा कर रहे हो तुम। तो बेटा ये मैं वाकया तुम्हें खूबसूरत वाकया सुनाती हूँ कि ये देखो किस तरह इस एक यहूदी का ईमान लाना। ये है हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि शाम में एक यहूदी रहता था, वो हफ्ते के दिन तौरात की तलावत किया करता। एक दफा तौरात खोली तो उसमें चार मुकाम पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ देखी। यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते फिर तौरात खोली तो आठ जगहों पर हुजूर की नात और वस्फ का जिक्र पाया, उसने यहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ते तौरात खोली तो यही तस्करा बारह जगह मौजूद। यहूदी सोचने लगा अगर मैं यूं ही करता रहा तो सारी की सारी तौरात जो है इस तस्करे से पूर्ण हो जाएगी। अपने साथियों से पूछने लगा कि मोहम्मद सलासम कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि नाउज़ुबिल्ला एक झूठे इंसान है, बेहतर यही है कि तू उसे देखे ना वो तुम्हें देखे। यहूदी कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम मुझे उनकी ज़ियारत से ना रोको। साथियों ने इजाजत दे दी। वो अपनी सवारी पर सवार हुआ और रात दिन मंजिल ब मंजिल चलता मदीना तैयबा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से उसकी मुलाकात हुई। हजरत सलमान फारसी होंगे ना, बहुत खूबसूरत देखकर समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है। हालांकि आपको इस दुनिया से सफर किए हुए तीन दिन गुजर चुके थे। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला ने उसकी बात से रो दिए और कहा मैं तो पूछा ना कि तुम ही मोहम्मद हो। उन्होंने कहा रोने लगे और कहा कि मैं तो उनका खादिम और गुलाम हूँ। वो बोला कि आप सरसम कहाँ हैं। तो हजरत सलमान सोचने लगे कि अगर विसाल की खबर सुनाता हूँ तो ये वापस हो जाएगा, अगर ये कह दूं कि मौजूद है तो झूठ होगा। आखिरकार कहने लगे कि मैं तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास ले चलता हूँ। मस्जिद में आए तो सहाबा कराम सब के सब गम की तस्वीर बने बैठे थे। यहूदी ने ये समझ के कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं में जरूर मौजूद होंगे अस्सलामु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पुकारा, जिससे तमाम सहाबा में एक कोहराम मच गया। सब आह बका करने लगे और उससे पूछने लगे तू कौन है जिसने हमारा जख्म ताजा कर दिया। कोई अजनबी मालूम होता है, कोई अजनबी शख्स मालूम होता है, शायद तुझे ये मालूम नहीं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीन रोज पहले विसाल हो चुका है। ये सुनकर वो यहूदी चीखने लगा हाय मेरा गम, हाय मेरे सफर की नाकामी, ऐ काश मेरी माँ मुझे ना जनती और जन ही दिया था तो काश मैंने तौरात ना पढ़ता और वो भी पढ़ी थी तो काश आपकी तारीफ और तौसीफ पर नजर ना पड़ती। अगर ये भी हो गया था तो मुझे आप की जियारत ही नसीब हो जाती। फिर कहने लगा क्या यहाँ अली मौजूद हैं जो मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और उलिया मुबारक का तारुफ कराए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया मेरा नाम अली है। वो बोला मैंने तेरा नाम भी तौरात में देखा है। हजरत अली ने हुलिया मुबारक बयान करना शुरू किया कि आप सरसम ना हद से लंबे ना ही ज्यादा छोटे, सर मुबारक गोलाई पे था, पेशानी कुशादा, आंखों की स्याही खूब स्याह थी, पलकें दराज थी, हंसी के वक्त दांतों से नूरानी शुआएं निकलती, सीने से नाप तक बालों की लकीर, हथेलियां पुरगोश, कदमों के तलवे कदरे गहरे थे और आप सलासम के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। यहूदी कहने लगा अली तुमने जो कुछ बताया है सही है, तौरात में आप सलासम की तारीफ और तौसीफ इसी तरह मौजूद है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कपड़ा हो तो मैं सूंघना चाहता हूँ। फरमाया हाँ सलमान जाओ और हजरत अली ने हजरत सलमान से कहा जाओ और फातिमा बीबी फातिमा से कहो कि अपने अब्बा का यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूल्हा जरा भेज दे। हजरत अली ने अपने घर भेजा ना बीबी फातिमा को। हजरत सलमान दरवाजे पर आए और आवाज दी ए फखरुल अंबिया के दरवाजे, ए जैनुल औलिया के दरवाजे, अंदर। हजरत हसन और हजरत हुसैन रो रहे थे, लिहाजा दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो बीवी फातिमा की आवाज आई, ये तीनों का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हजरत सलमान ने अपना नाम बताया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम दिया। वो रोते हुए बोली, मेरे अब्बा का जुब्बा कौन पहनेगा? हजरत सलमान ने सारा किस्सा सुनाया कि आप जुब्बा निकाल लाएं जो सात जगह से खजूर के रेशे के साथ सिला हुआ था। हजरत अली ने उसे पकड़ कर सुन रहा, फिर दूसरे सहाबा ने, और फिर यहूदी पकड़ कर सुनने लगा और कहता, वाह कैसी उम्दा खुशबू है। फिर मजार शरीफ पे हाजिर हुआ, आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि तू वाहिद है, यक्ता है, यगाना है, कायनात तेरी नियाज मंद और तू बेनियाज है, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि इस कब्र शरीफ वाले तेरे हबीब है, तेरा हबीब है, जो कुछ उसने फरमाया मैं उसकी भी तस्दीक करता हूँ और उस पर ईमान लाता हूँ। ए अल्लाह अगर मेरा इस्लाम लाना तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह अभी कब्ज कर ले। ये कह के वही गिर कर जान दे दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने उसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बकरी में उसे दफन किया। रहमल्लाह ताला वहशन्ना फिल ज़ुमरह सालिहीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखो बेटा कैसा वाकया है कि सूरह अहज़ाब की आयत मुबारक है, अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसहिम। तर्जुमा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब है। ठीक है, ये बहुत अहम आयत है, समझिए। तफसीर है कि अल्लाह ताला इस ताल्लुक की कैफियत बयान फरमाते हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गुलामों के साथ है। बताया तुम्हारी खैर ख्वाही, इस्लाह अहवाल और फलाह दारैन और तुम पर लुत्फ व करम फरमाने में मेरा महबूब तुम पर तुम्हारे नफ्सों से भी ज्यादा मेहरबान शफीक है, जितना मेरे नबी को तुम्हारी इज्जत खुशहाली इखलाकी बरतरी का ख्याल है तुम्हें खुद भी अपना इस कदर ख्याल नहीं। इस हकीकत की वजाहत एक दूसरी आयत में भी कर दी गई, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم। यानी जो चीज तुम्हारे तकलीफ दा है वो उन्हें भी गिरा गुजरती है और वो तुम्हारे ईमान के लिए बहुत चाहते हैं और अहले ईमान के लिए बड़े मेहरबान और रहीम है। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत किया, हुजूर पाक सल्लम का इरशाद यानी मेरी और मेरी उम्मत की हालत उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई हो और मुख्तलिफ जानवर और परवाने उसमें गिरने के लिए दौड़ते चले आ रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़ रहा हूँ और तुम उसमें गिरने पर इसरार कर रहे हो। हदीस बुखारी शरीफ की हदीस, यानी कोई मोमिन ऐसा नहीं जिसका दुनिया और आखिरत में मैं वाली नहीं। अगर तुम चाहते हो तो आयत पढ़ो, अन नबी औला बिल मोमिनीन अनफुसहिम, और जो मोमिन फौत हो पीछे माल छोड़ जाए तो उसके करीबी रिश्तेदार उसके वारिस होंगे, और जो मोमिन कर्जा वगैरह छोड़ जाए तो वो मेरे पास आए, मैं उसका वाली हूँ। हुजूर पाक सल्लम की शान करीमी पर इंसान कुर्बान जाए कितनी शफ़क़त और मोहब्बत का इज़हार फरमाया जाए। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे साथ ऐसा ताल्लुक है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरख्वाही और लुत्फ व करम का ये आलम है तो फिर अफसोस है हम पर अगर हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़कर अपने नफ्सों की ख्वाहिशात की पैरवी में लग जाएं और दूसरों की खुशी हासिल करने के लिए अपने नबी पाक की अताअत से सरकाबी करें। हमको इस अमर का पूरा एहसास होना चाहिए कि हम किस रऊफ और रहीम का दामन छोड़ रहे हैं और किसकी अताअत को शुआर यानी नफ्स और शैतान की अताअत को शुआर बना लिया है। یعنی حضور کا اولا بالمومنین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ان کے نفسوں سے بھی زیادہ مہربان اور شفقت کرنے والے ہیں، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نجات کی طرف بلاتے ہیں اور ان کے نفس انہیں ہلاکت کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی جو شخص اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہ سمجھے اور اپنے تمام حالات میں اپنے آپ پر حضور کی حکمرانی تسلیم نہ کرے، اس نے سنت کی شیرینے کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور کے ارشادات میں سے ہے، یہ چند ارشادات ہیں وہ بتاتی ہوں، کہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں ایمان، اخلاق اور عمل کا انتظار، کتنی خوبصورتی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں اور اس کی جڑ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور اس کی آخری شاخ یہ ہے کہ راستے میں اگر تم کوئی ایسی چیز دیکھو جو بندگان خدا کو تکلیف دینے والی ہے تو اسے ہٹا دو۔ اور حیا بھی ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے۔ فرمایا جسم اور لباس کی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور وہ شخص بے دین ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ فرمایا جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور برائی کر کے تجھے پچھتاوا ہو تو تو مومن ہے۔ فرمایا ایمان تحمل اور فراغ دلی کا نام ہے۔ بہترین ایمانی حالت یہ ہے کہ تیری دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے، تیری زبان پہ اللہ کا نام جاری ہو اور تو دوسرے کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ان کے لیے وہی کچھ ناپسند کرے جو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دینی چاہیے، اس کی زبان کھلے تو بھلائی پر کھلے ورنہ چپ رہے۔ فرمایا مومن کبھی تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، بدبو اور زبان دراز نہیں ہوا کرتا۔ فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ بخیل، پوچھا گیا بخیل ہو سکتا؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، اور کچھ ایک اور بھی بات پوچھی، لیکن یہ فرمایا کہ جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا مومن۔ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کی بدی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔ جو شخص کو پیٹ بھر کر کھائے اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے وہ ایمان نہیں رکھتا۔ فرمایا جو شخص اپنا غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہو پھر ضبط کر جائے، اس کے دل کو اللہ نے ایمان اور اطمینان سے اللہ پاک لبریز کر دیتا ہے۔ جو شخص کسی ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کا ساتھ دے وہ اسلام سے نکل گیا۔ فرمایا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، دکھانے کے لیے روزہ رکھا، دکھانے کے لیے خیرات کی، اس نے ایک درجے کا شرک کیا۔ چار صفات ایسی ہیں جسے پائی جائے وہ خالص منافق ہے۔ امین بنایا جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو عہد شکنی کرے، لڑے تو شرافت کی حد سے گزر جائے، جملہ مکمل منافق ہے۔ پھر فرمایا جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ فرمایا اصلی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری میں خود اپنے نفس سے لڑے، نفس کو پچھاڑے نا، اور اصلی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑے جنہیں اللہ نے منع فرمایا۔ فرمایا جانتے ہو قیامت کے روز اللہ کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ جن کا حال یہ رہا کہ جب بھی حق उनके सामने पेश किया गया तो उन्होंने मान लिया। जब भी हक उनसे मांगा गया उन्होंने खुले दिल से दिया और दूसरों के मामले में वो फैसला किया जो वो खुद अपने मामले में चाहते थे। फरमाया, तुम छह बातों की मुझे जमानत दो, मैं जन्नत की तुम्हें जमानत देता हूँ। छह बातें सुन लीजिए। फरमाया, बोलो तो सच बोलो, वादा करो तो वफा करो, अमानत में पूरे उतरो, बदकारी से बचो, बदनजरी से बचो, जुल्म से हाथ रोको। आप सरसर ने इन बातों को सिर्फ बातों की हद तक ना रखा बल्कि अमल की दुनिया में कायम करके दिखा दिया। आपका यही वो कारनामा है जिसके बिना पर आप सरसर नौ इंसानी के सबसे बड़े रहनुमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीबी आयशा से पूछा गया आपके अखलाक मुबारक के बारे में, तो आप बीबी पाक ने फरमाया कि कुरान पाक की अमली तफसीर हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक मुबारक, जिस चीज को जिस चीज का हुक्म कुरान में दिया गया आपने वो अपनाया अमल किया, जिससे मना किया गया कोसों दूर रहे आप। कुरान पाक की अमली तफसीर हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक है। तो ये हमको, हम भी थोड़ा अमल करें, नमाज को इखलास और मोहब्बत से पढ़ें, सिर्फ एहसान से नमाज पढ़ें इंशाल्लाह। सिर्फ एहसान, जैसे हुजूर पाक साहब का फरमान कि ऐसी नमाज पढ़ो, एक तो आपका फरमान हर नमाज ऐसी पढ़ो जैसे ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। फिर सिर्फ एहसान की नमाज के बारे में आपसे उनका फरमान कि ऐसी नमाज जैसे तुम ख्याल करो कि जैसे तुम रब को देख रहे हो, अगर ये इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते तो ये ख्याल करो कि अल्लाह पाक तुमको देख रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो ऐसी नमाज जो है सिर्फ एहसान की नमाज है। जकात दो, जकात खैरात दो, हुकूक इबाद का ख्याल रखो, हज की जिसको भी अल्लाह पाक तौफीक देता है इस्तेआत रखता है हज करे और रमजान के रोजे करे रखे। तो ये बेटा जो फराइज है उनको करो इंशाल्लाह, अल्लाह के जिक्र की बरकत से शरीयत मुबारक हमारी पहचान होगी। जिक्र बताती हूँ, अगर तुम लोग समझ लो तो करो, उसको करने से इंशाल्लाह जो है शरीयत मुबारक आसान होगी, तबीयत के मुआफिक होगी, हमें जोर नहीं लगाना पड़ेगा इंशाल्लाह तबीयत के मुआफिक हो जाएगी। ठीक है, बक्का
तलाश है।